नेताओं की रैलियों में हम लोगों ने हर जगह पे ये सुना है कि हम इतनी जॉब्स देंगे, लेकिन जॉब्स कहीं पे भी हमारे लोगों को मिल नहीं रही, जो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे शहरों के अंदर एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा कमी, जिसके कारण छोटे शहरों के बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत एग्जिस्ट करता है, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब खाली पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं। जो प्रॉब्लम है हमारे छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों के साथ में, वो ये है कि हेलो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई क्विक समाधान दिखता नहीं है। हम लोगों ने नेताओं की रैलियों में हम लोगों ने हर जगह पे ये सुना है कि हम इतनी जॉब्स देंगे, लेकिन जॉब्स कहीं पे भी हमारे लोगों को मिल नहीं रही है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि नैसकॉम की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, जिसके अनुसार 1.5 लाख जॉब्स खाली पड़ी हुई थी और उसके लिए इंजीनियर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। कोई भी ऐसे इंजीनियर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे जो कि उन जॉब को क्रैक कर पाए। और आप ये सोचिए कि दूसरी तरफ हम लोग 15 लाख इंजीनियर्स हर साल इस देश के अंदर निकालते हैं, जो कि ग्रेजुएट होके आते हैं, जिनके पास डिग्री होती है, जिनके पास एक अच्छा स्कोर होता है, अच्छी CGPA होती है, अच्छे परसेंटेजेस होते हैं, बट तब भी वो लोग तैयार नहीं होते उन जॉब्स को क्रैक करने के लिए। और दूसरी तरफ कंपनी स्ट्रगल करती है कि हमें इंजीनियर्स चाहिए, बट हमारे पास में वो लोग नहीं आ रहे हैं जो कि इस जॉब को क्रैक कर पाए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पूरी अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की जो समस्या है, उसका सबसे मूल रीजन जो एग्जिस्ट करता है वो ये है कि लोग जो है तैयार नहीं है जॉब के लिए, और हमारे कॉलेजेस जो हैं वो इस लेवल पे उन लोगों को तैयार कर नहीं पा रहे हैं कि वो लोग कहीं पे भी जाएं और जाके जॉब क्रैक कर पाए। तो आज मैं अपने टॉक के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम, जो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है और क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिससे हम लोग इस अनएम्प्लॉयमेंट की लड़ाई को साथ मिलकर लड़ सके और जीत सके। मेरा नाम प्रतीक शुक्ला है, मैं मसाई स्कूल का फाउंडर एंड CEO हूँ। मसाई स्कूल एक कोडिंग स्कूल है, जिसे एक मिलिट्री स्टाइल कोडिंग स्कूल भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिलोंग करता हूँ छोटे से शहर भिलवाड़ा से। मेरी स्कूलिंग, मेरा बचपन सारा का सारा भिलवाड़ा के अंदर निकला। लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड रहा है मेरा, और हम लोग हमेशा, ऑब्वियसली हमारे घरों में जिस तरह से बोला जाता है कि अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो आप पढ़ाई करते जाइए, और दिस इज़ वॉट हैपेंड विथ मी एज वेल, कि मैं बचपन से पढ़ाई अच्छा करता था, तो घर वालों ने कहा कि लोअर मिडिल क्लास में अगर आप पढ़ाई अच्छा करते हैं तो आपको इंजीनियर बनना है। तो उसी हिसाब से मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। मेरा सिलेक्शन हुआ IIT के अंदर, मैं IIT कानपुर गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं दंग रह गया कि लोग जो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जितने भी लोग हैं, छोटे शहरों के अंदर एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण छोटे शहरों के बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो लोग उस लेवल पे आ नहीं पाते। जब मैं कॉलेज में गया, मैंने पहली बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, जैसे कि टेबल टेनिस, जिसको हम आज तक टीवी पे देखते आए थे। 12th क्लास तक मैं केवल टीवी पे देखते आया था कि एक गेम होता है। जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे टेबल टेनिस, और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही दूसरी दुनिया है। जब आप एक लाइन इंग्लिश में पूरी बोल नहीं पाते तो आपको बहुत ही इन्फीरियर लगता है, लेकिन उसको मैंने एक तरीके से, आप सोचिए कि मैंने उसको एक तरीके से एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करी। मैंने कॉलेज के अंदर जाके वो सब काम करने की कोशिश करी, जिससे मैं अपने आप को वो सब जगहों पे प्रूव कर सकूं जो चीज़ों का एक्सपोजर मुझे बचपन में नहीं मिला। तो चाहे वो ड्रामेटिक्स हो, चाहे वो कोई भी इलेक्शंस हो, चाहे वो कोई भी कल्चरल फेस्ट हो, चाहे वो फेस्टिवल्स, टेक्निकल फेस्टिवल्स, सब के अंदर मैं इन्वॉल्व हुआ, मैंने पार्टिसिपेट करा, मैंने टीम्स बनाई, मैंने लीडरशिप लेवल पे उधर काम करा। 3rd ईयर में मेरी एक इंटर्नशिप लगी थी टीच फॉर इंडिया में। जब मैं टीच फॉर इंडिया गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पहला दिन जो था टीच फॉर इंडिया का, उसके अंदर हम लोगों का एक ऑडिटोरियम में इंट्रोडक्शन हो रहा था, इंडक्शन हो रहा था, और वहाँ पे मैंने देखा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, पहली कक्षा और पहली क्लास में और दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे स्टेज पे खड़े होके इंग्लिश के अंदर बातें कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आइडियाज बता रहे हैं। और मुझे देख के ये लगा कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेहनत, अगर कोई उनके साथ मेहनत करे, तो अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इस लेवल पे तैयार हो सकते हैं और वो ही फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के, तो इसका मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा फ्लॉ एग्जिस्ट करता है, बिकॉज उसके कारण हम लोग बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे या फिर बच्चों के ऊपर वो मेहनत नहीं कर पा रहे जो कि जिसके कारण वो लोग तैयार नहीं हो पा रहे। भारत के अंदर इतना अनटैप्ड या फिर इतना ऐसा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिसके कारण जिनको अगर आप साथ चल के उनको तैयार करने की कोशिश करें तो वो लोग आसमां भी छू सकते हैं। और ये चीज़ हम लोगों ने देखी भी है, आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के अंदर जो सारे उनके CEOs हैं या जो उनके संस्थापक हैं, सारे के सारे लोग, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लोग जो है वो इंडियंस हैं। तो हमारे देश में बहुत बहुत टैलेंट है, ये रियलाइजेशन हुआ मुझे अपनी टीच फॉर इंडिया की जर्नी के बाद। जब मैं कॉलेज में था तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सब चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करता था, उसके कारण मेरे को कॉलेज में लगता था कि ऐसी कोई जॉब नहीं एग्जिस्ट करती है जो कि मैं क्रैक नहीं कर सकूं। तो उस टाइम पे मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने केवल एक या दो कंपनी के अंदर अप्लाई करा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत हो गया है, कि शायद मैं मेहनत नहीं कर पाया। और वो रिजेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पॉर्टेंट लर्निंग लेसन था मेरी लाइफ का, कि आप जब इतने पॉपुलर हो कॉलेज के अंदर या फिर आप इतना जब सब काम कर रहे हो और जब सबको लगता है कि आप वो जॉब क्रैक कर सकते हो, और अगर आप वो जॉब क्रैक नहीं कर पाओ तो वो जो रिजेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उस टाइम पे मैंने 10-15 दिन का ब्रेक लिया और मैं एक जगह है हिमाचल में, वहाँ चला गया, सोचा कि लाइफ में क्या करना है। उस टाइम पे मुझे मैं एक किताब पढ़ रहा था, बैंकर टू द पुअर, और वहाँ पे मैंने मोहम्मद यूनुस जी के बारे में पढ़ा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में है, एक नोबल लॉरिएट हैं जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर छोटे छोटे गांवों से औरतों को सक्षम बनाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत काम करा है। माइक्रो फाइनेंस करके एक जो छोटे बैंक होते हैं, जो छोटे लोन्स होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम करा है और बांग्लादेश की इकोनॉमी में माइक्रो फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट जगा कि मुझे भी कुछ माइक्रो फाइनेंस की तरफ करना चाहिए, और मैंने अप्लाई करा और मेरा सिलेक्शन हो गया एज एन इंटर्न कॉलेज के बाद, कि आप बांग्लादेश आइए, पेमेंट वेमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन आपको एक एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये सोच के मैं गया, मैं अपने घर पे गया, बताया बहुत खुश होके कि जॉब वॉब तो मैंने ली नहीं, जॉब वॉब तो मेरी लगी नहीं, लेकिन अब मैं जाऊंगा बांग्लादेश और मैं जाके काम करूंगा गाँव में, और वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के थ्रू जो औरतें हैं उन लोगों को सक्षम बनाने की तरफ काम करा जाएगा। और मेरे घर वालों का सबसे पहला रिएक्शन ये था कि बेटा IIT से लोग भाग जाते हैं USA, यूरोप, और आप जा रहे हो बांग्लादेश, वहाँ पे लोगों की जॉब लगती है 1-1 करोड़ की, आप जा रहे हो इंटर्नशिप करते हैं जहाँ पे आपको पेमेंट भी नहीं मिलने वाला है, तो ये क्या कराया आपने IIT के अंदर जिसके कारण। और ये एक्सपेक्टेशन होती है, ऑब्वियसली वो दबाव होता है सब लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, और उस मामले में वो गलत भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अपने बच्चों से। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो मेरे एक कॉलेज के दोस्त ने स्टार्टअप स्टार्ट करा था कॉलेज के अंदर, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो उसने मुझे बुलाया, हम लोगों ने काम करना स्टार्ट करा, और तब मुझे ये चीज़ अपने बारे में समझ में आई कि मुझे शायद स्टार्टअप के अंदर, या मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे दिन रात काम करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे कोई सा भी प्रॉब्लम उठा के देंगे उसको सॉल्व करने के पीछे मैं 2-2, 3-3 रातों तक काम कर सकता हूँ। और ये चीज़ जो है ये अपने बारे में समझ में आई स्टार्टअप में 2-3 महीने काम करने के बाद, और फिर मुझे लगा कि शायद मुझे यही करना चाहिए, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, शायद उसी में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा और वही मेरा करियर होगा। और उस तरह से मेरी स्टार्ट हुई और मैंने पहली अपनी कंपनी स्टार्ट करी, जो कि इवेंचुअली 3-3.5 साल चलाने के बाद उसको एक्वायर कर लिया क्विकर ने। उस कंपनी का नाम था ग्रैब हाउस, जिसमें हम लोग ब्रोकर्स को हटाते थे और हम लोग एक ओनर और जो घर ढूंढ रहा है, तो जो जिसके पास घर है और जो घर ढूंढ रहा है, उन दोनों को मिलाने का काम करते थे बिना ब्रोकर के। सो ये हमारा स्टार्टअप था। हर एक एंटरप्रेन्योर का ड्रीम होता है कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए मैंने अपनी लाइफ में जो देखा था, वो देखा था टीच फॉर इंडिया के अंदर, जहाँ पे मैंने देखा था कि कुछ बच्चे एक एक साल टीच फॉर इंडिया के लोगों के साथ काम करके इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कि वो लोग कम्पीट कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के बच्चों के साथ में। तो मुझे लगा कि यही चीज़ करनी चाहिए, मुझे अपना करियर एजुकेशन की तरफ बनाना चाहिए और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी जो आज एग्जिस्ट करती है। और प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब खाली पड़ी हुई है और दूसरी तरफ 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं, जिसमें से 30% इंजीनियर बिल्कुल भी तैयार नहीं है और बिल्कुल किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा मसाई स्कूल। मसाई स्कूल में हम लोग कोई भी फीस चार्ज नहीं करते बच्चों से, अपफ्रंट फीस। केवल मसाई स्कूल के अंदर आप फीस पे करते हैं जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और आपकी 5 लाख पर एनम से ज्यादा की जॉब लगती है। अगर आपकी जॉब 4,99,000 भी लगती है तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा स्कूल बना है, पहले बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, बच्चों को सक्सेसफुल बनाएंगे, उसके बाद फीस चार्ज करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मसाई स्कूल, ये नाम कहां से आया। मसाई स्कूल का नाम आया जब मैं गया तंजानिया और मैं रुका वहां की अफ्रीका की सबसे स्ट्रांग ट्राइब, जिसको कहा जाता है मसाई मारा ट्राइब, उन लोगों के साथ मैं रुका। और वहां पे देख के मैं एक चीज जो जहन में आई वो ये आई कि जो भी वहां पे लोग हैं उनके कल्चरल बिलीफ काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन वो लोग बचपन से ही एक ना एक स्किल को पकड़ते हैं और उसकी तरफ मेहनत करते हैं और पूरी अपनी जर्नी उसी स्किल के अराउंड बनाते हैं। तो अगर आप बात करेंगे कि सबसे अच्छे किसान अफ्रीका के कौन है, तो मसाई मारा वाले लोग हैं। सबसे अच्छे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कौन है, तो वो मसाई मारा के लोग हैं। सबसे अच्छे हंटर्स कौन है, तो वो मसाई मारा के लोग हैं। और ये चीज उन्होंने अपने कल्चर के अंदर इस तरीके से डाल रखी है कि बचपन से ही बच्चा एक स्किल को पकड़ता है और उस पर तैयार करता है अपने आप को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और वो लोग बहुत ही स्ट्रांग बन के निकलते हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 2019 में, हम लोगों ने पहला बैच स्टार्ट करा और पहला बैच स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि जब हम लोग पेरेंट्स से बात करते थे तो पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई भी फीस चार्ज नहीं करोगे, कुछ तो फीस चार्ज करोगे, कुछ तो ऐसी बात है आपके मॉडल के अंदर जिसके अंदर कुछ तो हिडन होगा। जैसा कि हमारे भारत में, क्योंकि हमारे भारत में बहुत स्कैम्स हुए हैं एजुकेशन और बाकी सब जगहों पे, तो लोगों को लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि किसी ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सुना नहीं था पहले कभी, तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बड़ी मुझे काफ़ी हैरानी वाली लगी थी, जब मैं बच्चों के पेरेंट्स से बात करता था, तो जो हमारे पहले बैच में एक बच्चा था राहुल, तो उसके पापा लोको ड्राइवर थे, लोकोमोटिव ड्राइवर, जो कि हमारे ट्रेन के ड्राइवर थे। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे बच्चे को बैंगलोर बुलाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा दीजिए, लेकिन वो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ऑलरेडी है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, वो अच्छी बात है, उसको अभी कुछ आता नहीं है, तो हम लोग उसे सिखाएंगे और उसे जॉब के लिए तैयार करेंगे, और आप भेज दीजिए लैपटॉप लेके बच्चे को। तो ये लैपटॉप तो बच्चे के पास नहीं है, और लैपटॉप की क्या ज़रूरत है जब उसने इंजीनियरिंग कर ली बिना लैपटॉप के, तो फिर लैपटॉप क्यों होना चाहिए बच्चे के पास में। और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि जो प्रॉब्लम है हमारे छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चों के साथ में, वो ये है कि कंप्यूटर साइंस एक इंजीनियर बन जाता है लेकिन बिना लैपटॉप के, बिना कंप्यूटर के, और आप तो उसने क्या पढ़ा होगा वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। मसाई स्कूल ने 2.5 साल में 110 फैमिलीज को पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले आए। तो 110 फैमिलीज जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थी, वो आज पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। मसाई स्कूल में आज 700 से ज़्यादा बच्चे टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं, और हर महीने 300 से ज़्यादा बच्चे मैसे स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हैं और टेक कंपनीज और बाकी सब कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, हमारा जो एवरेज पैकेज है मैसे स्कूल से वो 8.5 लाख पर एनम है। और उसके कारण अगर आप देखेंगे तो ये बेटर है बहुत सारी NIT से। जून 2022 के अंदर हमारा टारगेट है कि हम लोग सारी IITs से सारी IITs में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होंगे मसाई स्कूल के अंदर। एक कोट है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, वो एक मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, उसका कोट है। मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँगा वो कोट क्या है। तो उस कोट के हिसाब से उम्मीद जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, शायद दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, और कोई अच्छी चीज़ मरती नहीं। तो अगर आपके अंदर उम्मीद है, अगर आपके अंदर जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए दुनिया जीतने के लिए।
भारत में ऐसे कई लोग हैं जो टैलेंटेड तो हैं, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज की कमी है, और अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जो इंडिया में बढ़ती ही जा रही है। क्या हो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ पाए बिना किसी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के, और आपको मिल सके सिक्योर और हाई ग्रोथ करियर। मिलिए मसाई से। 2019 में शुरू हुआ ये कोडिंग स्कूल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स में लोगों को जॉब्स के लिए ट्रेन करता है, और साथ ही सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देता है, ये सब जीरो अपफ्रंट फी पर। और अगर आपकी 5 लाख पर ईयर की जॉब ना लगे तो आपको मसाई में पढ़ने के लिए एक भी रुपया नहीं देना होगा। मसाई का एम है इंडिया के लोगों को आज की सबसे ज्यादा इन डिमांड जॉब्स के लिए ट्रेन करना। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपको ना तो एक्सपीरियंस की जरूरत है ना ही एक एजुकेशनल बैकग्राउंड की। जरूरत है तो बस डिटर्मिनेशन की और एक डेवलपर बनने के सपने की। तो इंतजार किस बात का? अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मसाई में आज ही एनरोल करें।